Thank you. Yeah. के ऊपर कुछ बोला जाए तो वैसे तो रूपा जी ने इसके बारे में जो है लेक्चर नहीं दिया है इस श्लोक के बारे में, तो मेरे को बहुत डिफिकल्ट फील समझने में कि क्या बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी गोपाल की और गुरु महाराज की कृपा से कुछ बोलने का प्रयास करेंगे, और अगर त्रुटि हो क्योंकि गोभी के सामने बैठे हैं तो मुझे क्षमा करेगा मुझे कुछ भी गलत बोला जाए तो। इसमें जो मैं समझ पाया हूँ उसके अनुसार जो ब्रह्मा जी है उन्होंने प्रश्न पूछे हैं काफी सारे, कृष्ण भगवान की भक्ति तब तक करने के बाद में उन्होंने, तो जब उन्होंने तपस्या करी तो उनके सामने भगवान गोविंद का दर्शन हुआ उनको, तो उन्होंने काफी सारे प्रश्न पूछे ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों, तो ब्रह्मा जी ने उसके अंदर ये समझने की जरूरत है कि ब्रह्मा जी जो है उनको स्पेशल सेवा दी गई है, कौन सी सेवा, इस सृष्टि का जो है क्रिएशन करने के लिए प्रकट करने के लिए, तो एक्चुअली तो भगवान की कृपा से प्रकट हो रहा है क्योंकि भगवान उनको शक्ति दे रहे हैं, भगवान उनको शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उनको सेवा दी हुई है करने के लिए, तो ब्रह्मा जी सेवा करते हैं। तो कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान को ये सृष्टि बनाने की जरूरत क्या है, तो उसमें बताया गया है कि जैसे गवर्नमेंट जो है उसको जेल बनाने की क्या जरूरत है ना, उन लोगों के लिए जो लोग जो है शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं करते, और जेल बनाने की जरूरत है जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार कार्य नहीं करते उनको जेल में बंद कर देना चाहिए, जो भी क्रिमिनल्स हैं थीफ हैं उनको बंद कर देना चाहिए। इसीलिए ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि की रचना करी गई कि इसमें जो जीव भगवत धाम में भगवान से भगवान के शास्त्रों के अनुसार भगवान की सेवा नहीं करना चाहते और ये भाव रखते हैं कि हमें भी हम भी भगवान बन जाए, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर एक जेल बनाया गया है, दुखालय शाश्वतम, दुखों का घर और जो शाश्वत नहीं है। तो इसके अंदर क्या है कि ये एंजॉयमेंट करने के लिए नहीं है, आनंद लेने और मजे करने के लिए नहीं है, ये जेल है। जेल में कोई व्यक्ति आनंद लेता है क्या? कोई व्यक्ति आनंद नहीं लेता, तो वहां पर क्यों पनिशमेंट मिलता है? क्यों पनिशमेंट मिलता है? जेल के अंदर पनिशमेंट मिलता है इसलिए कि ताकि जब वो व्यक्ति बाहर निकले तो वो कैसा बन जाए, अच्छा सिटीजन बन जाए, क्योंकि वो दुख जेल कर आया और फिर दोबारा जाने का इच्छा करेगी जो एक बार जेल होकर आएगा, उसकी इच्छा नहीं करेगी मैं दोबारा ऐसी जगह जाऊँ। तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मांड में भगवत धाम से जब इस जगत में आता है सत्वी लोक में, तो उसके बाद उसकी इच्छा यहाँ पर इतने दुख झेलता है, वो शारीरिक दुख मानसिक दुख हर तरह के तीनों प्रकार के ताप उसको सताते हैं, तो उसके बाद उसकी इच्छा नहीं होती कि दोबारा मैं इस धाम में। तो एक्चुअली तो हम वहीं से आते हैं भगवत धाम से, लेकिन उसके बाद हम दोबारा क्यों नहीं आते? क्योंकि हम इतना सब कुछ देख चुके होते हैं यहाँ पर कि हमारे दोबारा आने की इच्छा नहीं होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यद गत्वानुनिर्गमं तस्य तद्धामं परमं मम, यहाँ पर आने के बाद दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि एक बार व्यक्ति दुख झेलने के बाद दोबारा झेलने को तैयार नहीं होता। कहते हैं ना दूध का गला छाछ को भी फूक फूक कर देता है, एक बार गड़बड़ होगी और दोबारा ऐसा कार्य नहीं करना। तो बताते हैं कि ब्रह्मा जी जो है उन्होंने सही में गुरु परंपरा के वो पहले आदि गुरु है, उन्होंने सबसे पहले सृष्टि में भगवान के दर्शन किए। गोविंदम आदि पुरुषम, जब अभी आए थे प्रभु जी ब्रह्म संहिता श्लोक पढ़ रहे थे, तो गोविंदम आदि पुरुषम तमाम बजा गए, उन्होंने भगवान के दर्शन किए। कैसे? वेणुम क्वांतम अरविंद डाले साक्षम, हाथों में बांसुरी है और अरविंद कंपुली कमल की जैसे उनकी आंखें नेत्र हैं, ऐसे भगवान के दर्शन किए। तो भक्त पूछते हैं कि अगर हम भी भगवान को दर्शन कर सकते हैं, तो हाँ भगवान को दर्शन हम भी कर सकते हैं। कैसे? जब हम गुरु परंपरा में, जैसे हमारे जो संप्रदाय है कि आदि गुरु कौन है? ब्रह्मा जी, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। अगर इस संप्रदाय के महान आचार्य ब्रह्मा जी जो आदि गुरु हैं उनकी लाइन में चलेंगे और आगे आकर हम दीक्षा लेते हैं, गुरु के शरणागत होते हैं, गुरु के बताए गए रास्ते पर चलते हैं और अपने जो कि इंस्ट्रक्शन दिए गए कि अपना जप करना है नियम पूर्वक, कथा का श्रवण करना है और प्रचार करना है, अगर हम इन कार्यों को करते हैं तो इसको करने से हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। जैसे अभी मेरे को कथा कहने के लिए बोला गया, तो ये इसलिए नहीं कि मैं कोई एक महान व्यक्ति हूँ, इसलिए ताकि इनकी सेवा है ताकि हमारा प्यूरिफिकेशन हो, बोलने वाले का भी और सुनने वाले भी, टू वे प्रोसेस है ना, तो इसमें प्यूरिफिकेशन होता है। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे हमारे अंदर आंखों के नेत्रों में प्रेम अंजन छिता भक्ति विलोच लेना संतम सदैव देश विलोकयंती यम सदैव यम सदैव याम स्वयं श्याम सुंदर चिंतय गुरु स्वरूपम गोविंद आदि पुरुषम तम हम बजाने। भगवान जो है उनका दर्शन होगा हमको कब? जब हमारे नेत्रों में प्रेम अंजन लग जाएगा, भगवान से प्रेम कर लेगा। वो कब होगा? जब हम ब्रह्मा जी की तरफ प्योर डिवोशन सर्विस करेंगे। अभी हम जो करते हैं वो डिवोशनल सर्विस, खाली हम भक्ति में जुड़ जाते हैं और सर्विस करते हैं, डिवोशन भी नहीं होता, फिर वो डिवोशनल सर्विस आती है और उसके फिर आगे आ जाती है प्योर लविंग डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद हमेशा इस पर बहुत ध्यान देते हैं कि हम जो भी सर्विस कर रहे हैं वो लविंग डिवोशनल सर्विस होनी चाहिए। एक बार प्रभुपाद के भक्तों को प्रभुपाद ने प्राण में भेजा प्रचार करने के लिए, जब वो वहां गए तो उन्होंने एक छोटा सा एरिया लिया प्रचार करने के लिए, वहां पर भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया। और भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में एक व्यक्ति जो वहां का ऑर्गेनाइजर था उसने पूछा कि आपकी गीता में ऐसा क्या है, आप लोग के अंदर मैंने सुना है आप लोग ब्रश लेते हैं एलएसडी और उसके कारण आप जो है इतना नृत्य कर पाते हैं, इतना प्रचार कर पाते हैं, आपके ऊपर नशा रहता है। तो उन्होंने कहा हाँ सच में हम एलएसडी लेते हैं। उन्होंने कहा कि ये एलएसडी कौन सी है जिसका नशा कभी उतरता नहीं है। तो उन्होंने बोला एल मतलब लव, एस मतलब सर्विस, डी मतलब डिवोशन। लव सर्विस एंड डिवोशन टू श्रील प्रभुपाद एंड टू श्री गुरु एंड गौरांग, हमारा ये नशा कभी उतरता नहीं है। तो ये एलएसडी हम लोग भी लेते हैं जिसका नशा निरंतर बढ़ता रहता है। आनंदम बुद्धि वर्धनम, हमेशा आनंद की तरक्की होती है, कभी ऐसा नहीं होता कि आनंद नीचे हो जाए। लेकिन जो बाकी शराब है या एलएसडी जो बाहर मार्केट में मिलती है उसका नशा धीरे धीरे उतर जाता है। बताया गया है कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसके अंदर जितनी भी एनर्जीज हैं, भगवान की शक्तियां हैं, उन सब का एक ही कर्तव्य है क्या, भगवान की सेवा करना, फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड। लेकिन जो एनर्जी जब इस जगत में आती है, तीन प्रकार की एनर्जीज हैं, भगवान की शक्तियां हैं, एक अंतरंगा शक्ति, एक बाहरंगा शक्ति और एक तटस्था शक्ति। तो तटस्था शक्ति में हम लोग आते हैं, जो जीव है जिसके पास चॉइस है, या तो हम महामाया की सेवा करें या फिर हम योग माया की सेवा करें, इंटरनल एनर्जी या फिर एक्सटर्नल एनर्जी। तो हम एक्सटर्नल एनर्जी की जब सेवा करते हैं, माया के मोह में आ जाते हैं, तो हम इस जगत में प्रकट होते हैं। यहाँ पर इस जगत में हमारा जो है पैदा होते हैं, प्रकट तो भगवान होते हैं, हमको पैदा होते हैं। और अंतरंग शक्ति की जब सेवा कर लेते हैं, हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है, तो हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो भगवत धाम में क्या है कि सारे के सारे जीव जो भी यहाँ से जीव जाते हैं वो दिव्य शरीर प्राप्त करके भगवान की सेवा करने चाहते हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही कार्य है, फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम अपने ही सेंसेस को प्लीज करना चाहते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति ही करना चाहते हैं, और हमारे अंदर एक ही भाव रहता है क्या कि हम कैसे भी करके भगवान बन जाए। इसीलिए तथाकथित विभिन्न प्रकार के गुरु संप्रदाय में गुरु जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यजम माम एकम शरण व्रजा, मेरे ही शरण में आओ, भगवान कुछ नहीं होता। इस प्रकार से क्या होता है उनके अंदर अहंकार डेवलप हो जाता है। इवन हमारे भी परंपरा में कई बार ऐसा होता है, भक्त आते हैं धीरे धीरे जप करना शुरू करते हैं और फिर प्रचार प्रचार करते हैं, फिर धीरे धीरे उनके अंदर भी थोड़ा 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 ईगो आता है। तो बहुत छोटा सा शब्द है ईगो, लेकिन बहुत विशाल हमारी कवरेज कर लेता है, पूरी हृदय को कवर कर लेता है, और हम इस भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते, हमारा धीरे धीरे पतन होने लग जाता है, हमें आनंद आना बंद हो जाता है, मंदिर की सेवाएं करने की इच्छा नहीं होती है। तो यही कारण होता है क्योंकि ईगो अहंकार जो होता है वो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। तो बताते हैं कि जो अहंकार की एक छोटी सी कथा है, तो लेक्चर में बता रहे थे कि जो अहंकार है वो किस प्रकार से है कि एक बार एक जंगल में सियार थे, सियार रहते हैं जंगल में, सियार थे और एक सियार था, उनको राजा बना दिया गया कि आप हमारे यहाँ के राजा हैं, और अब आपसे क्या करेंगे कि आप राजा हैं, डिसीजन मेकर हैं आप हमारे यहाँ के, ठीक है। और सियार को बड़ा अच्छा लगा कि मैं जंगल का राजा बन गया हूँ, अब तो वो शेर के सामने भी थोड़ा सही से चलता था, ऐसे करके स्ट्रांग हो गया। उसके बाद में लेकिन सारे के सारे जानवर उसको इग्नोर करते थे, उसको बड़ा बुरा लगा, यार एक तरफ तो राजा राजा बोलते हैं, एक तरफ इग्नोर करते हैं, कोई ध्यान ही नहीं देता मेरी तरफ, ना कोई बोलता है कि राजा है सल्यूट करें, खड़े हो जाए पीठ पे, ये कैसा राजा बना दिया मेरे को। तो फिर उन्होंने सभा बुलाई अपने सियारों की, बोले आपने मुझे जंगल का राजा बनाया लेकिन उसके बाद भी क्या है कि कोई मेरे को सल्यूट नहीं करता, कुछ नहीं करता। बोले आप जंगल के राजा नहीं है, आप सिर्फ सियार कम्युनिटी के राजा हैं। बोले तभी मेरे सम्मान तो होना चाहिए, जिस संप्रदाय में जाता हूँ मैं शेर संप्रदाय में जाता हूँ या मैं फिर लोमड़ी की संप्रदाय में जाता हूँ, तो वहां पर मेरा सम्मान होना चाहिए। तो ये अहंकार उसमें डेवलप हो गया, जस्ट एक पोजीशन थी इसलिए ताकि वो सेवा कर सके। आज के जितने लीडर चुने जाते हैं, मिनिस्टर चुने जाते हैं, वो इसलिए होते हैं कि समाज की सेवा करें, जब वो वोट मांगने आते हैं तो समाज की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन बाद में वो लीडर बन जाते हैं, फिर उनके अहंकार डेवलप हो जाता है, तो हमें लीडर नहीं बनना है। तो फिर वो ऐसे ही होता है, तो वो बोलते हैं उनकी नीचे के संप्रदाय के जो महान आचार्य होते हैं, वो कहते हैं एक कार्य करते हैं कि आपको कैसे कुछ बनाते हैं, आप कलर ब्लू कर देते हैं, जैसे आप चलेंगे तो लोग आपको समझेंगे। बोले नहीं, उसमें तो क्या है, कलर में जब मैं पहुंच जाऊंगा सामने साक्षात तभी लोग देख के खड़े होंगे, कुछ ऐसा करो कि मेरी चलने की आवाज से ये लोग खड़े हो जाए, पता चल जाए कि सियार से राजा आ रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, हम एक काम करते हैं कि आपकी पूंछ में डंडा बांध देते हैं, जिससे आवाज होगी थक 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 थक, तो दूर से पता चल जाएगा कि कोई एक राजा आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर ऐलान कर दिया गया पूरे जंगल में कि आज का हमारे राजा का क्या है, लकड़ी बंधन संस्कार हो रहा है, और पूंछ में लकड़ी बांध दी गई और बोले कि आप भी चलेंगे। तो उनको एक एक्स्ट्रा स्पेशल डेडिकेशन दे दिया गया, फिर वो चलना शुरू कर दिए। अब वो चलते थे तो और आगे की तक 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 तक, तो सारे लोग चिड़िया भी उड़ जाती थी, राजा आ रहे हैं राजा आ रहे हैं। एक दिन शेर बहुत भूखा था, तो उसने देखा कि यार की कम्युनिटी के सारे लोग टहल रहे हैं, राजा भी हैं, तो उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया उनके पीछे खाने के लिए। और जब खाने लगे तो सारे शेर उसकी गुफा की तरफ भागे, तो सब तो स्पीड में भाग गए, लेकिन जो लीडर था वो उसके पास एक्स्ट्रा बर्डन था डंडे का, तो वो धीरे धीरे भाग रहा है, बाकी सारे भाग गए। और फिर जब गुफा के अंदर भागने का नंबर आया तो अंदर सारे शेर उसका हाथ पर उसे खींच रहे हैं, लेकिन वो जो डंडा था वो ऐसे हो गया गेट के ऊपर, जैसे आप गेट पर घुसे हैं तो ऐसे हो जाए बैग में हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल होते वो डंडा कर दिया और वो सब खींच रहे हैं, लेकिन शेर को पूछ पकड़ है, शेर ने उसको खींच लिया और खा गया। तो इसी प्रकार से है कि ये जो शेर है, यहाँ पर बता रहे हैं कि ये शेर जो है क्या है, एक मृत्यु है, और जो व्यक्ति के अंदर अहंकार आता है वो मृत्यु के पास में बन जाता है, लेकिन जो व्यक्ति गोविंद की शरण लेगा, उस अहंकार से बचने का प्रयास करेगा, हमेशा दास भाव को डेवलप रखेगा, तो उसके साथ इस प्रकार का नहीं होगा। तो बताते हैं परंपरा जी कि तीन प्रकार के हैं, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो जितने भी यहाँ पर इस जगत में बार हैं, डांस गार्ड हैं, ये सारे क्या हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस। और जो शहर के अन्य चीजें हैं वो हैं सब मोड ऑफ पैशन। वहां पर आप देखते हैं कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से आगे निकलना चाहती है, कई बार होता भी है, और मतलब वो पीछे से अगर हमने हॉर्न बजा दिया तो साइड तो दे देंगे, लेकिन उसके बाद में फिर पीछा करेंगे कि कैसे आगे निकल गए, और फिर शीशा खोल के कुछ अच्छे से शब्द बोलकर हम उनको चले जाएंगे। तो इस प्रकार से होता है। और जो जंगल आदि है ये सारे हैं मोड ऑफ गुडनेस, में लोग जाते हैं कि जंगल में जाकर हम जो है क्या करेंगे, वन में जाकर तपस्या करेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि ना तो आपको मोड ऑफ गुडनेस में रहना है, ना पैशन में, ना इग्नोरेंस में, आपको कहाँ रहना है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कौन टेम्पल आर वैकुंठा, मूड ऑफ वैकुंठा। तो आप यहाँ पर जब आएंगे तो आपके अंदर मूड ऑफ वैकुंठा आएगा, तो अच्छा ये है कि हम मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस को छोड़ के कहाँ आए, मोड ऑफ वैकुंठा में है। तो वैकुंठ की सेवा करना चाहते हैं तो हमें कौन टेम्पल से ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। ग्लोरिफिकेशन कैसे करेंगे, सिर्फ वाचिक में, बोलने से नहीं, उसके कंस्ट्रक्शन, उसके रेनोवेशन, उसका प्रीटिंग, उसके अंदर सेवाएं, हमें सब में सम्मिलित होना चाहिए, हर एक भक्त को प्रयास करना चाहिए कैसे भी इस कौन टेम्पल की ग्लोरी बढ़े। हम जगह जगह जहाँ पे भी जाएं तो लोग हमको देख के पूछे आप कहाँ से, तो बताएं हम कौन टेम्पल से हैं, और उनको हम बुलाएं। इस प्रकार से हम कॉन्ग्रीगेशन को भी बढ़ा सकते हैं। हमेशा हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि जहाँ पर भी जाएं हम खाली मंदिर के अंदर भक्त ना हो, जहाँ पर भी हो 24 आवर्स हम भक्त हों। ऐसा नहीं कि सिर्फ जब मंदिर में आते हैं सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में तब हम भक्त हैं, फिर शाम को हम अपने मेटीरियल जगत में वापस जाते हैं तो हम भूल जाते हैं। हमें हमेशा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भक्त है 24 आवर डिवोटी है, कहीं पर भी जाएगा तिलक धारण करेगा, कंठी माला होगी, और वो अपना जप कर रहा होगा, एक्स्ट्रा चैंटिंग कर रहा होगा, रीडिंग कर रहा होगा, या फिर प्रीचिंग कर रहा होगा, तो जहाँ पर भी उसको देखा जाएगा तो पूछा जाएगा आप कौन है, बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं लोगों में से, तो फिर वो बताएगा कि मैं इस्कॉन टेम्पल से हूँ, कहाँ से 137 फरीदाबाद से। तो फिर इस तरह से ग्लोरिफिकेशन होता है, और फिर हमको सेवा करनी चाहिए इसके अंदर आकर, हरी नाम की सेवा, कीर्तन की सेवा, प्रचार की सेवा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, इतना बड़ा मैराथन बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, इसमें हर एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए हम ज्यादा से ज्यादा किताबों का वितरण करें। क्योंकि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप मेरा ऋण चुकाना चाहते हैं जिसके कारण आप भक्त बनता है, तो आप किताबों का वितरण करिए और किताबों को पढ़िए। पढ़ना भी बहुत जरूरी है, खाली वितरण तो जरूरी है लेकिन पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप नहीं बदलेंगे तो आप किसी का जीवन नहीं बदल सकते हैं। तो पहले अपना आचार बदलना है तभी प्रचार कर सकते हैं। और फिर इसमें बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने काफी सारे प्रश्न पूछे हैं भगवान कृष्ण से, जब उनके दर्शन हुए हैं तो भगवान से वो पूछ रहे हैं कि भगवान आप मुझे फिलॉसफी के लिए बताइए, फिलॉसफी के लिए ये बताइए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ को जाऊंगा, मेरा प्राकट क्यों हुआ है, मुझे क्या सेवा मिली है। तो हर एक जीव जो है वो ब्रह्मा जी जो है सर्वश्रेष्ठ जीव है, तो उनसे हमको सीखना चाहिए कि हम जब गुरु संप्रदाय में गुरु परंपरा में जुड़ते हैं तो हमको किस प्रकार से प्रश्न पूछने चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। विनम्र निवेदन करके गुरु से पूछना चाहिए हमको कि मेरी क्या सेवाएं हैं, मैं कैसे अपने जीवन को सफल बना सकता हूँ। लेकिन हम लोग कभी ये सब से नहीं पूछेंगे तो हमारा कभी भी भक्ति में रुचि नहीं आएगी हमारी, हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड माई बुक्स एंड डिस्कस अमंग डिवोटीज। और इसी के लिए प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम की जो ये क्लासेज है, भगवद गीता की क्लासेज इसीलिए रखी ताकि इसमें डिस्कशन हो सके, ज्यादा से ज्यादा हम कृष्ण चर्चा कर सकें। इसी के लिए हमको बोला गया श्रीमद् भागवत की किताबों को पढ़ना बहुत ही ज्यादा अत्यंत आवश्यक है। एक बार अभी पीछे द्वारका में श्रुति कीर्ति प्रभु आए थे तो वो कुछ अपने पास टाइम्स बता रहे थे, उन्होंने बोला कि मुझको बुक्स पढ़ने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, मुझे पढ़ने में बिल्कुल आनंद नहीं आता था किताबों को। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास में गया और श्रील प्रभुपाद भगवद गीता पढ़ रहे थे, तो मैंने प्रभुपाद जी से कहा कि बोले तुमने ये किताब पढ़ी है? वो बोले मैंने मना किया कि मैंने ये किताब नहीं पढ़ी है क्योंकि मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला अगर आपने ये ग्रंथ नहीं पढ़ा है भगवद गीता तो योर लाइफ इज वेस्ट, आपका जीवन बेकार है। तो उन्होंने बोला कि लेकिन इतने सारे शास्त्र कैसे पढ़ूंगा, उन्हें तो कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीड भगवदगीता एंड योर लाइफ इज सक्सेसफुल, आप सिर्फ इसको पढ़ लीजिए भगवदगीता को, आपका जीवन सक्सेसफुल हो जाएगा। बोले फिर मैंने भगवदगीता पढ़ना शुरू कर दिया तो एक दिन मैं गया तो प्रभुपाद जी नेचर ऑफ डिवोशन पढ़ रहे थे, तो फिर मैंने प्रणाम किया फिर बैठा तो प्रभुपाद जी ने पूछा तुमने ये बुक पढ़ी है नेचर ऑफ डिवोशन? तो बोले मैंने मना किया कि नहीं पढ़ी है। प्रभुपाद जी बोलते हैं योर लाइफ इज वेस्ट, यू शुड रीड नेचर ऑफ डिवोशन, दिस बुक इज सफिशियंट टू टेक यू बैक टू गॉड। तो बोले फिर मैंने नेचर ऑफ डिवोशन भक्ति दशा में तेलुगु पढ़ना शुरू किया। जब वो समाप्त हुआ तो एक प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम किया तो देखा प्रभुपाद कृष्णा बुक पढ़ रहे थे, तो प्रभुपाद ने पूछा है कहीं आपने कृष्णा बुक पढ़ी है? तो बोले मैंने मना किया मुझे मैं पढ़ने का शोर था। तो उन्होंने बोला नहीं मैंने मना किया मैंने नहीं पढ़ी है। तो प्रभुपाद जी बोले अगर आपने कृष्णा बुक नहीं पढ़ी है तो आपका जीवन बेकार है, दिस द बुक इज सफिशियंट, कोई और शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको भगवत धाम ले जा सकती है ना। तो फिर प्रभुपाद जी ने इतनी बात बोलकर शिष्य राधा गोविंद तो प्रभुपाद जी ने इतनी बात बोलकर और फिर बोला कि ये पूरी बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कृष्णा बुक का एक पेज भी काफी है आपको भगवत धाम ले जाने के लिए, आप जानते हैं श्रुति की। तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे नहीं मालूम था। फिर प्रभुपाद जी ने पूरी बुक को बंद करते हुए बोला कि इसके ऊपर तो लिखा है पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण, अगर आप ये एक लाइन भी अपने जीवन में पढ़ लेते हैं तो भी बहुत है आपको भगवत धाम जाने के लिए। फिर प्रभुपाद जी ने आगे बोला कि ये लाइन भी नहीं, अगर आप खाली शब्द कृष्ण को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो भी काफी है आपके भगवत धाम जाने के लिए। ये प्रभुपाद जी की जो है लीला है कि प्रभुपाद जी कैसे अपने भक्तों को प्रेरणा देते थे कि भगवत हमें धाम जाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। तो उन्होंने ये भी बताया कि शास्त्र पढ़ना भी जरूरी है और आखिर में ये भी बताया कि कृष्ण तत्व जो है अपने जीवन में हम कैसे भगवान की शरणागत हो, खाली एक कृष्णमय हमारा जीवन हो जाए तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन हम सारे शास्त्र पढ़ लें, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 18,000 श्लोक याद भी कर लिए लेकिन माया इतनी स्ट्रांग है कि 18,000 भागवतम के श्लोक याद है और मैं सोच रहा हूँ मैं वीर पुरुष हूँ क्योंकि मुझे 18,000 श्लोक याद है, लेकिन दूसरे दिन क्या होगा मेमोरी लॉस, आपका एक्सीडेंट हो गया और फिर एक भी श्लोक याद नहीं है। आप फिर बोले जाएगा श्रीमद् भागवतम में आएंगे तो आप बोलेंगे ये क्या है, ये कौन सा ग्रंथ है। तो ये माया आपको कभी भी कैसे कर सकती है अगर अहंकार हमारे जीवन में आता है, तो हमें अहंकार से बचना चाहिए, प्रयास ये करना चाहिए कि हम नित्यम भागवत सेवा करें, है ना। भागवत सेवा जो है रोज डेली करें, जब आप श्रवण करते हैं अगर आप मंदिर में आ सकते हैं तो फिर ऑडियो से सुनिए, लेकिन नित्यम भागवत सेवा करनी चाहिए, रोज प्रसाद सुनिए रोज प्रचार करें। तो ये श्री प्रभुपाद की एक सुंदर पाठ्यक्रम था और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी जो है जब उनका प्रागट होता है तो अपने चतुर्मुख से जो है वेदों का उच्चारण करते हैं, चार प्रकार के वेद जो हैं वो ब्रह्मा जी के चार मुख से प्रकट होते हैं। उसके बाद फिर ऋषि और बहुत तरह के उनके पुत्र उनके जब पैदा करते हैं सृष्टि की रचना में, प्रजापति उत्पन्न करते हैं, चतुर कुमार उत्पन्न करते हैं, नारद जी को उत्पन्न करते हैं, और इन सबको क्या बोलते हैं कि जो सबसे पहले मैंने वेद दिए हैं वेदिक स्क्रिप्चर्स उनके अनुसार आपका जीवन चलना चाहिए, शास्त्र विधि को छोड़ना नहीं चाहिए। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं अपने जीवन में कि हम मंदिर भी आते हैं मंदिर से जुड़ भी जाते हैं लेकिन जहाँ इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है वहाँ पर हम अगर अपना एनालिसिस करें तो हम 0/0 होते हैं। तो प्रयास ये करना चाहिए या कि हमारे गुरु महाराज बोले गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज भी कहते हैं कि भगवत गीता के 700 श्लोकों में से अगर एक श्लोक भी आपने चाहे आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े अपने जीवन में अगर उसको उतार लिया तो आपको फिर भगवत मान जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दिक्कत ये होती है 700 श्लोक पढ़ते भी हैं उसका प्रचार भी करते हैं लेकिन अगर हम चेक करें कि हम कोई भी एक श्लोक हमारे जीवन में उतार पाए तो हम देखेंगे कि हम कुछ कुछ परसेंटेज में कोई डिवोटी उतार पाए लेकिन पूर्ण परसेंटेज में कोई नहीं उतार पाया। जैसे भगवान बोल रहे हैं कि कल धर्मान परित्याज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापा हूँ मोक्षयामि मां शरणम। तो बाकी सेकंड लाइन तो भगवान के ऊपर है अहम तो भगवान कह रहे ये नहीं मेरा काम है लेकिन पहली लाइन ये तुम्हारा काम है सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ। तो इसमें जो धर्म बताया गया है कौन सा धर्म है? धर्म बताया है दैट आई एम समथिंग अहम ममेति मैं और मेरा। अगर किसके भाव से हम निकल पाएंगे तो उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट काम भगवान का है लेकिन हम पहला काम ही नहीं कर रहे। एक लाइन भी हमारे जीवन में जो पूर्ण शरणागति हुई नहीं है ना किसी को बोला जाए कि आप जाइए यहाँ पर पंजाब टेम्पल में आप एक काम करिए कि प्रभु जी आप बहुत अच्छा गुजारते हैं आप नाइजीरिया चले जाइए तो वहां पर जो है 3 भक्त हैं और आप वहां जाइए वहां प्रचार करिए मंदिर निर्माण करिए तो पूरी रात को नींद नहीं आएगी व्यक्ति को कि ये कैसा जैसे सेवा दे दी है भाई फरदाबाद से रहता हूँ परिवार यहाँ यही सेवा दे दी थी कैसी सेवा दे दी नाइजीरिया से ले जाइए है ना। तो ये शरणागति नहीं है। शरणागति होती है कि कोई भी व्यक्ति को कहीं भी भेजा जाए तो वो वहां पर जाके वो सेवा करने के लिए तत्पर है तैयार है लेकिन हमारे अंदर इस प्रकार की शरणागति नहीं है। इसीलिए क्या कहते हैं भगवान कृष्ण कि नाम प्रकाशन से सर्वस्य योग माया समावृतम मूढ़ा ना भी जानती लोक माम अर्थ अव्ययम। तो नाम प्रकाशन सर्वस्य मैं सबके लिए प्रकट नहीं होता इसलिए हमको दर्शन भी नहीं हुए। कितने काल हो जाते हैं जप करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम इतना प्रयास करते हैं कि भगवान हमें दर्शन दे दो आंखें तरस नहीं है ना लेकिन भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं मूढ़ भी जान होती मूढ़ मूढ़ व्यक्ति तो हमें जानते नहीं है। तो मैं तो अपने आप को बोलता हूँ मेरे से बड़े से कोई मूर्ख ही नहीं है। सबसे बड़े मूर्ख हैं कि सब कुछ पढ़ते हैं सारी भगवत गीता पढ़ी भागवत तक पढ़ रहे हैं लेकिन उसके बाद भी अपने जीवन में उतारने के लिए एक ही श्लोक उतारने का है। जिस श्लोक को चेक करते हैं ये वाला होगा ये वाला कोई भी ऐसा श्लोक नहीं जो हमारे जीवन के ऊपर लगे कि हाँ हमने अपने जीवन में कोई भी श्लोक उतारा है। तो जो ये माया है ये बहुत स्ट्रांग है और किस प्रकार से आती है तो इधोली में दादानाथ स्वामी महाराज बहुत अच्छी एग्जाम्पल से बताते हैं कि जो माया है वो पूतना से रहती है और पूतना ने क्या किया कि वो बहुत सुंदर देह धारण करके छोटे से कृष्ण भगवान को जहर पिलाने के लिए जा रही है। तो देखने में जब वो श्री व्रज मंडल में प्रवेश करती है तो देखने में लगता है कि विश्व सुंदरी है कौन कौन से ब्रह्मांड से राजकुमारी उतरी है और सारे के सारे गाँव ब्रजवासी उनको देखने लग जाते हैं ध्यान पूर्वक देख रहे हैं उनको। लेकिन जब वो वहां जाते उसके मन में क्या इंटेंशन क्या था कि मुझे कृष्ण को मारना है जहर पिलाना है। तो आप देखें प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जगत में दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ पूतना एंड कंसर्न। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक ही इच्छा है क्या कि कृष्ण भगवान ही है। आप जितने भी लोगों को प्रचार करने जाते हैं अभी भगवद गीता में लोगों को बोलिए गीता ले लीजिए कह रहे हैं भगवान भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती। इसका मतलब दे वॉन्ट टू किल कृष्णा एंड तो फिर कृष्ण को मारना चाहते हैं। अगर वो स्त्री है तो वो पूतना है अगर पुरुष है तो कंस है। तो अगर हम भी देखें तो हम भी अपने जीवन में कृष्ण को माने नहीं है कि हम भगवान हैं सिर्फ वहां मानते हैं बाहरी रूप से लेकिन अंदरूनी रूप से जो सर्व शरणागति है वो नहीं है हमारे अंदर। तो हम भी अभी हाफ पूतना हाफ कंस के लेवल का भी है पूर्ण शरणागति नहीं है। तो उसमें बताते हैं कि जो बड़ी चार्जिंग लगती है चीजें माया में जैसे टेलीविजन क्रिकेट बहुत सारे भक्त हैं कई बार मिलते हैं मंदिर में तो डिस्कशन करते हैं प्रभु जी आज कौन सी टीम जीत गई तो ये पता नहीं कौन सी टीम किस कौन सी टीम की इलेक्शन की पूछ रहे नहीं क्रिकेट का आपने देखा नहीं है देखते नहीं है। इस प्रकार के 10 साल हो गए 15 साल हो गए लेकिन क्रिकेट का इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ या फिर टेलीविजन के अंदर न्यूज का इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ या पॉलिटिक्स का। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये बहुत बहुत ही चार्जिंग लगती है चीज है। अरे हम जब कर रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं 10 मिनट क्रिकेट दे दिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? वो पॉइजन है स्वीट पॉइजन धीरे 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 हमारे जीवन में आएगा और हमारा इंक्लिनेशन टूवर्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस हटकर इंक्लिनेशन टूवर्ड माया कॉन्शियसनेस हो जाएगा और फिर एक दिन हम पूरा मैच देख लेंगे क्या फर्क पड़ता है दस साल से जब कर रहा हूँ पूरी सीरीज देख लेते हैं ट्रायल सीरीज में क्या फर्क पड़ता है जब करता हूँ और फिर जब के कारण वो फिर एक दिन जब टूट जाएगा ट्रायल सीरीज और वर्ल्ड कप और यही हमारे जीवन का मूल स्रोत रह जाएगा। हमारा बुरा है तो बहुत ही चार्जिंग लगती है और धीरे धीरे हमारे जीवन में आती है, क्योंकि अभी हमारी भक्ति जो है वो छोटे कृष्ण जैसी है ना, बेबी कृष्ण जो भगवान से वहाँ पे भगवान है तो बहुत नन्हे से बालक है और पूतना 6 महीने के बालक को मारना चाहती है। तो वो पूतना जो है ये माया है और हमको हमारे जो अभी भक्ति रूपी बीज पूर्ण रूप में सफा नहीं कर ली मतलब लता नहीं बना उसको कभी भी आकर अंदर घुस जाएगी और आकर जहर पिला देगी, मारना चाहती है। और अभी असलियत में हमारे में कृष्ण तो है नहीं, जो भी उसको मार देंगे हम ही मर जाएंगे आखिर में। इसलिए बेहतर ये है कि ये जो चार्जिंग ड्यूटीज है वर्ल्ड की उससे हम दूर रहने का प्रयास करें है ना। तो पास टाइम और श्रील प्रभुपाद बताते हैं और शुद्ध रीति प्रभु हमसे डिस्कस कर रहे थे ये कि एक बार प्रभुपाद जी के साथ वो और इंडोनेशियन समाज में शुद्ध स्वामी महाराज और प्रभु जी चल रहे थे, तीनों लोग चल रहे थे तो वहाँ पर एक लेक था जो कि लेक के अंदर पूरी बर्फ जमी हुई थी और उसके साथ साथ चलते थे लेक के तो वो दिख गया था ऐसे करके दिख गए पूरा पास था। तो प्रभुपाद जी जब चलते और जब नदी के किनारे आते तो उनके हाथ में स्टिक रहते थे डंडा रहता था, तो प्रभुपाद क्या करते थे कि उस आइस के ऊपर ऐसे करके दौड़ के ब्रेक करते थे और टूट जाती थी वो। फिर इधर जाते थे तो दूर चले जाते थे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम, फिर इधर गए तो फिर से दौड़ के तोड़ दिया। तो जब इस तरह से चार पांच साल हुआ तो स्तुति कीर्ति प्रभु से रहा नहीं करने पूछा प्रभुपाद आप कोई भी काम ऐसे तो नहीं करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है कि आप बार बार जाते हैं और झंडे से आपके बर्फ को तोड़ देते हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा जो जीवन है, प्रभुपाद जी अपने लिए बोल रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में क्या इससे मैं सीख रहा हूँ कि हमारा जो हृदय है इसके नीचे जो जल है उसके प्रकार कोमल है, बिल्कुल सॉफ्ट हार्ट है हमारा, बिल्कुल चेतना हमारी भगवतमय है, लेकिन उसके ऊपर ये माया का जो आवरण है बर्फ रूपी ये चढ़ गया है और मेरे जीवन का सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है क्या कैसे भी करके इस माया के आवरण को तोड़ के जो कोमल हृदय है जो शुद्ध चेतना है भगवान की कृष्णा कॉन्शियसनेस वो मेरे जीवन में प्राप्त हो सके, इसलिए मैं इसको बार बार तोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो फिर तुम्हारे भी जीवन में तोड़ने का यही प्रयास होना चाहिए। तो इस पास टाइम से हमें सीखना चाहिए कि कैसे प्रभुपाद जी कितने मतलब जिस डिवाइन मिले प्रभुपाद के लेवल पर जो प्रचार कर रहे हैं वो भी अपने बारे में सोच रहे हैं कैसे मैं इस माया के आवरण को तोड़ूं। तो हम क्या जीव है, हमारे लिए तो माया का इतना बड़ा आवरण है, हर प्रकार से ग्रस्त जीवन में रहते हैं, वहां पर कभी ये कभी वो घर की प्रॉब्लम सब माया है, ये कभी भी हमको कैप्चर कर लेते हैं है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, नित्य भागवत सेवा करनी चाहिए, नष्ट प्रायेषु नित्यम भागवत सेवा भगवती पुरुषम श्लोके भक्तन जयती नष्ट। तो इसमें प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमको नित्यम भागवत सेवा करनी है। दो प्रकार के भागवत प्रभुपाद जी ने बताए हैं, एक संत भागवत एक ग्रंथ भागवत। तो संत भागवत जैसे गुरु होते हैं हमारे उनकी सेवा करनी चाहिए, सेवा भी दो प्रकार से कर सकते हैं वक्तु सेवा और वाणी सेवा। तो फिजिकली तो सारे भक्तों को नहीं प्राप्त होता है कि गुरु के संपर्क में आ सके, लेकिन जो वाणी की सेवा है उनके ग्रंथ जैसे प्रभु जी ने इतने सारे साक्षी गुरु जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं वाणी गुरु महाराज के, तो वो सारी बुक्स हमको पढ़नी चाहिए। तो ये वाणी सेवा है, जब हम पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे हमारे गुरु हमसे क्या चाहते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद भक्ति सरस्वती महाराज का मूड लेकर जो है प्रचार करने गए, आप देखिए कि भक्ति सरस्वती महाराज के भी 5-10 हजार डिसाइपल थे और उन्होंने 64 गौड़ीय मठों की स्थापना करी, लेकिन कितने सारे गौड़ीय मठ कितने सारे डिसाइपल, लेकिन आप उसमें से कितने डिसाइपल को जानते हैं 3 या 4 और सबसे ज्यादा किसको जानते हैं इस डिवाइन शिला प्रभुपाद। क्यों, क्योंकि प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के मूड को पूरा पूरा समझा। वो कैसे समझेंगे, वाणी की सेवा से। आप पर्सनली गुरु से मिलेंगे भी तो आप डिस्कशन करेंगे अपने स्टूडेंट रिलेटेड या अपनी सेवा के रिलेटेड आप डिस्कस करेंगे और आप वापिस आ जाएंगे, लेकिन मूड को समझने के लिए वाणी सेवा आपको करनी पड़ेगी। वो कहते गुरु महाराज के लेक्चर सुनिए, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनिए, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़िए, गुरु महाराज के ग्रंथों को पढ़िए। ये सेवा जब हम करेंगे तब हम रियली मूड को समझ पाएंगे और माया के आवरण को तोड़ पाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति ऑलरेडी बंधन में बंधा हुआ है ना वो कैसे खुलेगा। हम अपने आप प्रयास करें हमें कोई बांध दे तो हम अपनी रस्सी को खोल सकते हैं, नहीं हो सकते। उसके लिए कौन चाहिए, वो व्यक्ति जिसकी रस्सी खुली हुई है। तो गुरु और शिला प्रभुपाद जो है उनकी रस्सी खुली हुई है, जब हम उनकी वाणी को सुनते हैं उससे हमारा क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। इसीलिए जब जपा करते हैं तभी शिला प्रभुपाद का कैंटीन बॉक्स को चलाते हैं, क्योंकि हम अपनी आवाज जब खुद कानों से सुनते हैं तो उतनी पावरफुल नहीं है जितनी कि शिला प्रभुपाद की वाणी है। जब वो हमारे कानों में जाती है तो हमारा कैंटीन बहुत फास्ट रहता है और माया का आवरण टूटता है, लेकिन हम अपना प्रयास करते रहेंगे तो कभी माया का आवरण नहीं टूटता है। और एक एक बार एक राजा थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक व्यक्ति को बुलाया और कहा कि हम एक महल बनवाना चाहते हैं, है ना। तो महल बनाने में क्या है कि बहुत सुंदर सा महल बनाना और उसके अंदर बहुत अच्छी सीमेंट और जितनी भी ब्रेक जितनी भी जरूरत हो वो सारी चीजें उसमें लगाना, पैसे की कोई कमी नहीं है, पूरा का पूरा भंडार खुला हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है कि हम महल बनाएंगे। उन्होंने महल बनाना शुरू किया, लेकिन चीटिंग प्रोपेंसिटी, तो कहते हैं कम फ्रॉम कृष्णा ओनली, बट कृष्णा इज यूटिलाइजिंग फॉर अदर पर्पज एंड वी आर यूटिलाइजिंग फॉर अदर पर्पज। कृष्णा इज यूटिलाइजिंग फॉर द पर्पज प्लीजिंग डिवोटीज, लेकिन हम किसके कर रहे हैं, हमें प्लीजिंग कृष्णा करना चाहिए, प्लीजिंग सेंसेस, हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ही उस चीटिंग प्रोपेंसिटी को यूज करते हैं। तो प्रभुपा जी बोल रहे हैं अपने लिए करते हैं तो वो गलत है, लेकिन अगर हम कृष्णा के लिए करते हैं तो कोई गलत नहीं है ना। तो उसमें बताते हैं कि उस व्यक्ति ने क्या किया, चीटिंग प्रोपेंसिटी के अनुसार जो छलने के लिए नकली सामान लगाना शुरू कर दिया, पूरे के पूरे महल में, कभी चूने में कुछ गड़बड़ कर दी, सीमेंट में कुछ गड़बड़, कच्चा पूरा एकदम बना के महल ऐसा कि घूसा मार दो तो वो गिर जाए, है ना। और फिर राजा को बुला के दिखाया, बोले देखिए राजा साहब आपके लिए बहुत बढ़िया महल बन गया है। तो राजा तो बुद्धिमान के समझदार थे और उनको पता भी चल गया सूत्रों के द्वारा कि इसके अंदर जो है मेटीरियल गलत है। तो उन्होंने कहा वाह वाह क्या महल बनाया, क्या महल बनाया। तो बोले कि देखा आपने करोड़ों का महल है। बोले वहां और तुम्हारी जो चार्जिंग है वो कितने हैं इस महल को बनाने के। तो उन्होंने कहा कि वो कुछ नहीं, बस 20-25 लाख रुपए ही लगे मेरे को, बाकी तो सब आपका है, करोड़ों का महल है, देखिए रत्न जड़ित महल बना है। तो उन्होंने कहा हम बहुत खुश हैं, 20-25 लाख से क्या होगा, तुम एक काम करो पैसे छोड़ दो ये महल रख लो। तो अब वो टेंशन में आ गया, अरे महल तो 15-20 हजार का भी नहीं बनाया मैंने, तो इतना मतलब इसमें नकली सामान लगाया तो कभी भी गिर जाएगा, ये क्या दे रहे, मेरा तो लॉक हो गया। तो ऐसे ही इस स्टोरी का क्या समझ सकते हैं कि हम भी पूरा जीवन क्या है, हमको भगवान ने और ब्रह्मा जी ने हमको क्या किया, एक शरीर प्रदान कर दिया, भगवान ने एक आत्मा प्रदान कर दी और कहा कि आप भगवत धाम जाने के लिए भजन करो। तो हमने एक नकली महल बना लिया है, बाहर से तो देखने में जैसे मैं लगता हूँ, देखने में अच्छा भक्त लगता हूँ, लेकिन अंदर से देखा जाए तो मेरे से ज्यादा कुछ भी नीचे फॉलन नहीं होगा, कुछ भी मतलब जीवन में उतार नहीं पाए भक्ति में इतने सालों के अंदर, है ना। तो आप लोग तो महान भक्त हैं, तो आप लोगों के संग में तो सकता है थोड़ा बहुत मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन जो है बाहर से लगते हैं बहुत सुंदर महल है रत्न जड़े, है ना। और फिर भगवान के शरणागत भी जाते हैं, ये लीजिए भगवान आपके लिए इतना सुंदर महल बनाया है, फिर भगवान भी क्या कहेंगे तुम जो है एक महल को रख लो, फिर दोबारा जीवन दे देंगे, एक और शरीर दे देंगे, फिर से तुम प्रयास करो। तो ये खोखला महल जो है, खोखला है ना क्योंकि तो अंदर से कुछ भी नहीं है, अंदर से जो चेतना है वो पूरी पूरी तरह से प्रदूषित है ना, लेकिन बाहर से बहुत सुंदर लगते हैं, हम क्रीम भी लगाते हैं, तिलक भी लगाते हैं और भी बहुत सारी चीजें लगाते हैं, तो बाहर से सुंदर महल लेकिन अंदर से खोखला। तो प्रयास ये करना चाहिए कि ऐसा महल बने जिसको हम जब भगवान के चरणों में ऑफर करें तो भगवान भी खुश हो कि हाँ चलो मेरे बच्चे ने कुछ तो सेवा करी, कुछ तो अच्छी चीज करी। एक खोखला महल भगवान को पसंद नहीं आता। तो ये खोखला महल कब हम नहीं कर पाएंगे, जब हम कृष्ण के शरण में जाएंगे और जोर जोर से भगवान के नामों का जप करते हुए कीर्तन करते हुए जाएंगे। क्या कीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम जो है शरणागति क्यों नहीं कर पाते हैं, तो समय हो गया, दो छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाऊंगा, प्रयास करूंगा, समझा तो नहीं सकता हूँ। तो उसमें बताते हैं कि प्रभुपाद जी कि हमें शास्त्रों के ऊपर क्या है शरणागति नहीं है ना। जैसे कि प्रभुपाद जी एक बार बता रहे एग्जाम्पल, जब समुद्र मंथन हो रहा है तो उसके अंदर क्या है कि प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हुए मतलब कथा सुना रहे हैं डिवोटीज को, तो बता रहे हैं कि समुद्र मंथन में सुमेरु पर्वत है, नीचे भगवान ने सबसे अवतार लिया है, वासुकी नाग है, एक तरफ डीमन राक्षस है, एक तरफ डेमी गॉड्स हैं, और वो उस नाग को खींच रहे हैं, और जब वो खड़े हुए हैं तो समुद्र जो है महासागर के अंदर 7 मील तक उनका पैर है और उनके घुटनों तक पानी आ रहा है खाली। तो सारे के सारे डाउट करने लग जाते हैं, प्रभुपाद ऐसा कैसे 7 मील, इतना बड़ा व्यक्ति जो कि घुटने तक ही 7 मील पानी में, उसके ऊपर से कितना मील, ऐसा कभी होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यही है शरणागति नहीं है, ना गुरु के ऊपर ना शास्त्र के ऊपर, डाउट आता है ना। लेकिन जब वो कंपेयर करके बताते हैं, बोले प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमारे कैलकटा में एक मतलब वो यहाँ पर भी होता है कीड़ा, दिवाली के टाइम पर आता है, तो प्रभुपाद जी उसमें बोलते हैं दिवाली फोका उसको बोलते हैं, कैंडल्स के चारों तरफ वो घूमता है, मोमबत्ती के चारों तरफ, उसकी उत्पत्ति होती है रात के समय और सुबह जब उठती है तो वो हम देखते हैं काफी सारे मरे हुए होते हैं, है तो उसका जो जीवन है, देखिए रात को 12 घंटे से 10 घंटे के बीच में उसका जीवन है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं वो 10-12 घंटे के जीवन में ऐसा नहीं है कि वो आया और उसने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके अपना जीवन त्यागा। नहीं, उसने क्या किया, पहले तो वो 6 प्रकार के उसमें गया, विभिन्न प्रकार, पहले पैदा हुआ, उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ, फिर स्टेबिलिटी आई, फिर उसने कुछ उत्पादन किया, बच्चे पैदा किए, और उसके बाद फिर वो बूढ़ा हुआ, और उसके बाद फिर वो सुबह होने से मर गया। तो 6 प्रकार के जो चेंजेस बताए गए लाइफ के, उन सबने वो गया। और क्या किया उसने, आहार किया उसने, खाया, कुछ छोटे छोटे कीड़े खाए, निद्रा, सोया भी वो, भय डरा भी वो, जो हमने ऐसे मोमबत्ती से किया, और मैथुन बच्चे भी पैदा किए, आहार निद्रा भय मैथुन भी कर लिया उसने 12 घंटे में, है ना। सोचिए कि वो पूरा जीवन जी रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अगर उसे बोला जाए कि पता है मनुष्य जीवन जो होता है 100 वर्ष का होता है, अच्छा, और एक एक महीने का मतलब जो होता है उसमें 30 दिन होते हैं, और रोज जो होती है 24 घंटे की होती है, ओ बाप रे बाप, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बोलेगा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने जीवन को सोच रहा था कितना 12 घंटे का जीवन कैसे कटेगा, बूढ़ा हो गया, इतने बच्चे हैं, देखभाल कैसे करूंगा, इतनी टेंशन होती है उसको भी, इसीलिए वो सुबह तक हार्ट अटैक से मर भी जाता है। तो आप देखिए, ये तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कंपैरिजन करिए आप, तो आपको समझ पाएंगे कि प्रभुपाद ने हर एक अलग चीज का एक्सप्रेस किया है, कैसे कंपेयर करके। अगर आप दिवाली को करो, पतंग वाले तिल चटा या जो भी जानवर जीव को बोलते हैं, उससे आप कंपेयर करेंगे, डायमेगॉड के जीवन में, एक जीव के जीवन में और उसके जीवन में फर्क है ना। हर एक को दिया गया है समय, कुछ कुछ समय का, किसके लिए दिया गया है, भजन करने के लिए, लेकिन हम उसको किस लिए करते हैं, वही काम जो पतंगा कर रहा है, दिवाली कोका कर रहा है, वही काम हम नहीं करते रहते हैं, है ना। इसीलिए मनुष्य जीवन को हमें क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन जो ये माया है जिसको हमने आज डिस्कशन किया, वो हमको चारों तरफ से घेर के रखती है। तो एक लेक्चर में दोनों साधना स्वामी महाराज बता रहे थे कि ये व्योमासुर है ना, ये माया व्योमासुर के अनुसार है, और वो क्या करती है कि धीरे से हमारे जीवन में घुसती है। जैसे कि उसमें बताते हैं पास टाइम कृष्ण भगवान का, कि भगवान खेलते थे तो उसमें क्या करते थे, कुछ भेड़ बन जाते थे बच्चे, और भेड़ बनकर एक जो है पुलिसमैन बन जाते थे, और भगवान कृष्ण तो कृष्ण है ही, वो जज बनते थे हमेशा, तो उनके पास में लेके आया जाता था, बोले इन्होंने हमारी भेड़े इतनी चुरा ली, यही ये लोग कर रहा। टेलीविजन वीडियो गेम तो थे नहीं कि आराम से वीडियो गेम ऑन किया और मेरी कार तेरी कार से आगे बढ़ गई, ऐसे तो होता नहीं। तो क्या करते थे, कुछ बच्चे भेड़ बन गए तो उसने भेड़ चुरा ली, और फिर उसके बाद में आपस में लड़ाई चल रही है, फिर कृष्ण जज कर रहे हैं 3 इसकी 3, 2 इसकी थी, तो मैथमेटिक्स भी सीखते थे, 3 + 2 5 हो गया, वहीं से सब कुछ ज्ञान प्राप्त होता था। तो क्या हुआ उसमें से धीरे धीरे व्योमासुर भी एक बच्चा बन गया, और बनकर उनके बीच में वो इन्वॉल्व हो गया, है ना। बिल्कुल ऐसा, तो कितना अच्छा मित्र है, खेल रहा है, और धीरे से बच्चों को कहता है चलो चलो झाड़ के पीछे छुपेंगे, और फिर झाड़ के पीछे जैसे जैसे वहां से उठाता है और ले जाके अपने बहुत बड़ी सी गुफा उसमें डाल देता है, और फिर पत्थर से उसको बंद कर देता है। तो देखिए ये जो व्योमासुर है वो हमारे को जीवन में क्या है, माया है। हर प्रकार से हमको पिछले परिवार के रूप में, कभी कोई हमें बदतमीजी करता है, कभी प्रतिष्ठा के रूप में, प्रभु जी आप ही सबसे अच्छे हैं, प्रभु जी आप ही सबसे अच्छे हैं, 3 बार किसी ने बोला कदमी लगने बिली हो जाता है, सब रोज मुझे सबसे अच्छा, अरे प्रभु जी आप ही समझ पाए, और तो आपको कोई समझा ही नहीं, आपके हाथ में माइक क्यों नहीं है, प्रभु जी आप माइक लीजिए बताइए सबको, मैं तो इतना प्रयास करता हूँ सब समझे कि मैं, सब मुझे बुलाई सोचते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमारे मन के अंदर फीलिंग होती है, 3 बार कोई बोले तो अंदर की भावना बाहर आ जाती है, पहले तो नहीं नहीं बोल कर रहा था, नहीं नहीं गुरु जी नहीं, नहीं गुरु जी आप सबसे अच्छे, नहीं गुरु जी नहीं सबसे अच्छे, गुरु जी आप माइक लेके बताइए, गुरु जी मैं तो कब से प्रयास करो, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, कोई मानता ही नहीं। तो ये है हमारे अंदर तो यही फीलिंग होती है कि मैं सबसे अच्छा, लेकिन प्रभुपाद बोल रहे हैं हमको क्या बनना है, दास अनुदास, दासों के दास का दास का दास। तो सबसे घृणित व्यक्ति अपने आप को हम फील करेंगे तभी हम कुछ सेवा कर पाएंगे। अगर हमें कंटेंटमेंट आ गया कि बस अब तो मेरी साधना बहुत अच्छी, मेरा मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा है, मैंने इतना सेवा कर दी, मैंने इतना ये फंड कर दिया, मैंने इतना डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो बस फिर उसके बाद में स्टेबिलिटी आने के बाद फिर बीच में वापिस आना शुरू हो जाए, क्योंकि एक बार व्यक्ति करता है टॉप पर जाने के लिए, फिर थक जाकर फिर नीचे करता है, लेकिन जब सीढ़ी का अंत ही ना हो तो व्यक्ति चढ़ता चला जाएगा। आपने देखा होगा कभी भी आप किसी धाम में जाते हैं तो ऊपर चढ़ते वक्त जो कोल्ड होता है, उतरते वक्त एकदम, बड़कांगा धाम में भी जाते हैं इतनी सीढ़ियां हैं, चढ़ते जाएंगे तो एकदम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ऊपर पहुंच जाएंगे बिल्कुल दर्शन के बाद में सब बिखर जाते हैं, अरे चलो हरे कृष्णा चलो 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 एकदम बिखर जाएंगे सारे, क्यों, क्योंकि अब कंटेनमेंट आ गया लाइफ में, बस पहुंच गया, हो गया, अब वापिस आना है तो अब तो फ्रीली घूम सकते हैं। सकते हैं, लेकिन जब हमें वो एंड ही नहीं मिलेगा है ना, तो हम चढ़ते चले जाएंगे, चढ़ते चले जाएंगे और हमारा जोश कभी खत्म नहीं होगा, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। तो जब तक हम भगवत धाम वापिस न चले जाए तो ये जोश बना रहना चाहिए। फिर क्या करता है वो व्योमा भी धीरे से बढ़ता बढ़कर हमारे दोस्त बनकर घुसता है हमारे जीवन में और फिर ले जाता है हमको छुपा देता है कहाँ, मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण की अंधेरी गुफाओं में है ना। फिर वहां पर कृष्ण दिखाई नहीं देते बिल्कुल, इसीलिए लोग बोलते हैं ना कृष्ण के कभी दर्शन नहीं होते, हमारे अंदर जब करते हैं भाव नहीं आता, क्यों? क्योंकि अब हम व्योमासुर के संग में आ चुके हैं। लेकिन जब जोर से चिल्लाते हैं कि आप कृष्णा कृष्णा कृष्णा, तो क्या होता है व्योमासुर को मारने के लिए कृष्ण आ जाते हैं और फिर व्योमासुर को सिर्फ कृष्ण ही मार सकते हैं। जब कृष्ण को व्योमासुर को मार देते हैं कृष्ण, आप क्या करते हैं वो हटाते हैं और फिर धीरे धीरे थोड़ी सी रोशनी गुफा में आने शुरू होती है और फिर उस रोशनी से क्या करते हैं एक एक करके सबको बाहर निकाल देते हैं, है ना। तो हमें भी क्या करना है, भगवान की शरण लेनी है। जब भगवान की शरण लेंगे तभी माया रूपी अंधकार की जो ये गुफा है इससे हम बाहर निकल पाएंगे। इसलिए जब जब करें या फिर कोई भी हम सेवा करें तो हमारे अंदर यही भावना होनी चाहिए कि मैं कुछ भी हूँ, हे भगवान मैं मोड ऑफ इग्नोरेंस इस तमोगुण के अंधकार में फंसा हुआ हूँ, मुझे बाहर निकाल लीजिए। और जोर से भगवान का पुकारना चाहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो समय हो गया, चलो जल्दी हुई तो शर्मा देंगे। हरे कृष्णा।